यकम् संसारतापशमनम् समरथम् समदर्शिनम् स्वयं प्रकाशं संसिद्धं स्वरूपानन्दसद्गुरुम् पावनं परमं शान्तं पावसेवासिनं भजे सोऽहं सिद्धिसुसम्पन्नो नादसन्धानसंस्थितः वीतरागो विशेषज्ञ श्रीगुरुः पातु मां भवे ज्ञानेशाङ्घ्रिसरोजलुब्धमधुप स्वामी स्वरूपाङ्कितः सन्तानां वचनानुभूतिपथिक साक्षी स्वयं कापरी गार्हस्थे किल एकनाथ सदृशो वृत्तौ तुकारामवत् सोऽहं योगरतं कृतार्थचरितम् वन्दे यतिं माधवम् स्वामी माधवनाथवल्लभमथो वैराग्यरत्नाकरम् प्रेमाभक्तसुशान्तदान्तसुहृदम् उत्तुङ्गदिं वत्सलम् सोऽहं बोधशुचिद्वपूर्णसततम् तुर्यत्वमासादितम् वन्दे त्वां मकरन्दनाथयतिनम् रक्षस्व दीनाङ्कितम् बोला जगद्गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। परमहंस सद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज की जय। परमहंस सद्गुरु स्वामी माधवनाथ महाराज की जय। परमहंस सद्गुरु स्वामी मकरंदनाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।
परमहंस सद्गुरु स्वामी माधवनाथाय नमः। परमहंस सद्गुरु स्वामी मकरंदनाथाय नमः। स्वामी जी आपके मार्गदर्शन में स्वामी माधवनाथ जी का जो ये जन्म शताब्दी चल रहा है, इस उपलक्ष्य में कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी में से ये है स्वामी माधवनाथ दर्शन, और इस श्रृंखला में आज का विषय है स्वामी स्वरूपानंद और स्वामी माधवनाथ। जब से इस विषय पर चिंतन थोड़ा अधिक गहराई में आरंभ हुआ तो ये पता चला कि इन दो महान संतों का एकत्रित जीवन चरित्र, उसके कुछ आयाम पर नजर डालना या उसमें प्रवेश करना आम साधकों के लिए लगभग असंभव है। और इस बात से कबीर जी भी सहमत हैं। वे कहते हैं कि एक तीर कबीरे लागे दूजा सेना नाई, नामदेव के ऐसे लागी घायल जनाबाई, जिसकी लागी सोई जाने और न जाने भाई। परंतु साधक एक काम तो कर सकता है, उनके जीवन चरित्र में प्रवेश करने का प्रयत्न तो कर सकता है। वो प्रयत्न अत्यंत प्रेरणादायी, साधना के पथ पर अनेक युक्तियों जो वहां से प्रदान किए जाते हैं उसे प्राप्त करने का अवसर रहता है। तो चलिए आज हम स्वामी स्वरूपानंद और स्वामी माधवनाथ इनके एकत्रित जीवन के कुछ आयामों में प्रवेश करेंगे। उसके लिए एक काम करते हैं कि हम सभी काल के उस दौर में जाते हैं, अतीत के कुछ पन्ने पलटकर उस तारीख पे जाते हैं। तारीख है 27 अक्टूबर 1968। पावस चलते हैं अनंत निवास के उस कमरे में जहां इन दोनों महापुरुषों की पहली मुलाकात हुई थी। उस पहली मुलाकात में क्या क्या हो रहा था थोड़ा नजर डालें। सद्गुरु कृपा का एक दुर्लभ अध्याय तब स्वामी माधवनाथ जी बाड़ा साहेब इस नाम से जाने जाते थे। सद्गुरु कृपा का एक दुर्लभ अध्याय बाड़ा साहेब के जीवन में आरंभ हुआ। वक्त का ऐसा एक जंक्शन था जिस वक्त के जंक्शन पर पीछे की अनेक घटनाक्रम का ये परिपाक था और हम सभी साधक विश्वों के लिए आने वाले सुनहरे दिन का बीज समाया हुआ था उस घटना में। दोनों की नजर मिली और एक मूक संवाद हुआ। बाड़ा साहेब के लिए गीता ज्ञानेश्वरी में वर्णित ज्ञानी पुरुष सगुण रूप में प्रत्यक्ष साकार हुआ था स्वामी स्वरूपानंद जी के रूप में, और स्वामी स्वरूपानंद जी के लिए उनकी अपनी ही छवि दिखाई दे रही थी बाड़ा साहेब में। वो नजारा है, कभी कभी स्वामी जी कहते थे ना, भरत राम भेंट का अगर चित्र बनाया जाए, इस नजारे का भी चित्र बनाया जाए तो बड़ा अद्भुत होगा। स्वामी स्वरूपानंद जी जीवन में जो करना चाहते थे वे बाड़ा साहेब कर रहे थे। दोनों के विषय में हम थोड़ी जानकारी अगर पुनः स्मरण करें तो दोनों बचपन से ही श्रद्धावान प्रकृति के थे, सुसंस्कारित प्रकृति थी, परोपकार की वृत्ति थी, समाज एवं राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा थी। और एक उन दोनों में एक शिक्षकी अंदाज था, अपनी बात को प्रतिपादित करने का एक अद्भुत शिक्षकी अंदाज था। आगे हम ये सब थोड़ा विस्तार से देखेंगे, ये थोड़ी पूर्व पीठ का भूमिका तैयार हो रही है। दोनों को परमार्थ में रुचि थी, शास्त्रों का अध्ययन, विशेष रूप से बचपन से ही भगवद गीता में विशेष रुचि थी। शास्त्रों में बताए हुए सद्गुणों का अभ्यास अपने जीवन में प्रयोग करते हुए जीने के लिए वे तत्पर थे। वित्तेषणा थी नहीं, प्रसिद्धि से दूर रहने की प्रकृति थी, परंतु साथ ही लोक संग्रह की कला में वे दोनों ही अद्भुत तरीके से निपुण थे। गुरु शिष्य की जब जोड़ी बनती है तो कबीर जी के ही शब्द, संतों के ही शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर से हाथ सहार दे बाहर से करे चोट। एक संघर्ष चलता है, सद्गुरु मंजिल की ओर राह बताते जाते हैं, शिष्य अन्य दिशाओं में रमा हुआ रहता है, जिज्ञासा है उनकी दिशा में चलने की। कुछ देर चलता है फिर नहीं चलता है, सद्गुरु को विशेष मेहनत लेनी पड़ती है। जब तक उस शिष्य में जिज्ञासा कायम है, अन्य दिशा में बढ़ने की प्रेरणा कम होते जा रही है, शिष्य को सद्गुरु को मेहनत लेनी पड़ती है। पर यहां ऐसा नहीं था। इस नजारे में स्वामी स्वरूपानंद जी देख रहे थे कि ये शिष्य लगभग तैयार था, और आगे हम देखेंगे कि हमने कई बार ये चरित्र पढ़ा भी है, सुना भी है, 4-5 वर्षों में लगभग सिद्धता को प्राप्त हो गया। पर ये स्वामी जी, ये जो नजारा था उस अनंत निवास में 27 अक्टूबर 1968 का, उस नजारे में स्वामी स्वरूपानंद जी तो ये देख रहे थे कि मैं जो न कर सका वो करने वाला ये सच्चिच्य सामने आया है। थोड़ा हम उनके चरित्र में अगर प्रवेश करें तो दोनों के जीवन के प्रवाह और उम्र के पड़ाव में घटनाओं का क्रम अलग अलग रहा। स्वामी स्वरूपानंद जी को 19-20 की उम्र में परमहंस सदगुरु गणेशनाथ जी का अनुग्रह मिला, साथ ही उस साधना उनके दी हुई साधना करने में तो लगे ही हुए थे। उसी समय भारत स्वतंत्रता के संग्राम में भी लगा हुआ था और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने स्वावलंबन आश्रम ये विद्यालय यहां शुरू किया पावस में। उनकी इच्छा तो ये थी कि कालांतर में विवाह करके पुणे में प्रपंच को परमार्थ रूप करने का प्रयत्न किया जाए। भगवत गीता ज्ञानेश्वरी में जो बात कही गई है वो अनेक जिज्ञासुओं को प्रवचन के माध्यम से उसका प्रतिपादन किया जाए, परंतु उनका यह स्वप्न उनकी ओर से प्रत्यक्ष साकार नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि जब कुछ समय के लिए वह पावस आए तो इस कदर बीमार पड़े कि बीमारी तो दूर हो गई मगर बहुत ही कमजोर हो गए। शरीर उनका इतना कमजोर हो गया कि फिर वो एक तरह से हमेशा के लिए पावस में ही रह गए और साधना के पथ पर वो इस कदर चले कि कुछ ही काल में परमहंस पद को प्राप्त हुए। अपनी सारी ऊर्जा उन्होंने ग्रंथ लेखन में लगाई, अनेक ग्रंथों का निर्माण किया और स्वामी माधवनाथ जी 19-20 की उम्र में उससे भी पहले पितृ छाया हटने के कारण पुणे में आए। 20 से 40 की उम्र में उन्होंने काफी कष्ट करके संसार खड़ा किया, साथ ही में शास्त्रों का अभ्यास करते हुए उसमें से जितनी साधना वो समझ सकते थे उसका अपने जीवन में प्रयोग कर रहे थे। 40 की उम्र में लगभग उन्होंने ज्ञानेश्वरी निरूपण आरंभ किया। ये हम फटाफट एक एक मुकाम पार करते जा रहे हैं। ज्ञानेश्वरी निरूपण जब आरंभ किया उसके 2 वर्ष बाद वे आरंभी गए। अब हम आज के विषय के उस प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं कि जो नजारा 27 अक्टूबर 1968 में हम देख रहे थे, वहां पर स्वामी माधवनाथ जी यानी उस वक्त बाड़ा साहेब वो आए थे केवल एक सत्पुरुष के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनकी ओर से ज्ञानेश्वर महाराज समर्थ इन्हें वे अपना गुरु मान चुके थे और किसी और गुरु को करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी उनकी प्रेरणा स्वरूप थी। 1960 में बाड़ा साहेब, कुछ समय हम बाड़ा साहेब इस शब्द का साथ लेंगे, बाड़ा साहेब के ज्ञानेश्वरी वाग्यज्ञ को 2 वर्ष पूरे हुए, वे आनंदी गए। समाधि से प्रणाम करते वक्त एक आवाज सुनाई दी, चालली आहे ती सेवा साधना अशित चालू दे, मी तुझे पाठीशी आहे। साथ आए नंदभाऊ ने कहा कि आळंदी में ही एक ज्ञानेश्वरी भक्त स्वामी सत्यदेवानंद सरस्वती रहते हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। स्वरूपानंद की ओर कैसे एक एक संकेत आ रहा था। स्वामी सत्यदेवानंद जी स्वामी स्वरूपानंद के भक्त थे, शिष्य थे, अंतरंग अधिकारी थे। ज्ञानेश्वरी के एक ओवी पर उनके कमरे में एक छोटा सा निरूपण भी किया बाड़ा साहेब ने और वो उन्हें इतना अच्छा लगा कि उनमें एक मित्रता सी हो गई। बाद में एक दिन वे नियमित ध्यान के समय, बाड़ा साहेब नियमित ध्यान के समय जो प्रयोग करते थे ओम श्रीराम का नाम जप कर रहे थे, अचानक वह नाम लुप्त होकर उसकी जगह सोहम सोहम स्फुरण आरंभ हो गया, श्वास सहित सोहम जप, मानो हाल ही में आळंदी में ज्ञानोबा के दर्शन की कृपा से यह सोहम बीज अंकुरित हुआ हो। अगली बार जब वे आळंदी गए तो नृसिंह सरस्वती के मठ में उन्हें निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। इस कारण श्री ज्ञानेश्वर महाराज ही अपने सद्गुरु है यह भाव अधिक दृढ़ हुआ। धीरे धीरे उनकी नित्य की पूजा अधिक अंतर्भाव से होने लगी, नित्य कर्म अधिक प्रेम पूर्वक एवं ईश्वर भाव सहित होने लगा। एक बार स्वामी सत्यदेवानंद सरस्वती बाला साहेब के घर उनके निमंत्रण पर आए और उन्हें सहज ज्ञानेश्वर महाराज व ज्ञानेश्वरी की चर्चा उनमें चलने लगी। बाला साहेब नियमित चल रहे पांचवें अध्याय के उनके प्रवचन के कुछ ओवियां गुनगुना रहे थे। बाला साहेब हर रोज शाम को निरूपण किया करते थे और उस पर दिन भर चिंतन किया करते थे, ओवी गुनगुनाया करते थे। वो ओवी उन्होंने पूरी योग युक्त पुरुष का वर्णन करने वाली ओवियां पढ़कर गाकर सुनाई। स्वामी सत्यदेवानंद जी आंखें बंद करके सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे अर्थ स्वयं निकलकर प्रकट हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप ज्ञानेश्वरी में इतने डूबे हुए हो तो आपको एक बात बताता हूं। दूसरा संकेत मिला सदगुरु की ओर का, स्वामी स्वरूपानंद जी की ओर का। ये ओवियां जिनके जीवन में साकार हुई है ऐसे सत्पुरुष को मैंने देखा है। बाला साहेब ने आश्चर्य से पूछा कि क्या सच में इस काल में ऐसा कोई महापुरुष है? स्वामी सत्यदेवानंद जी ने कहा, हाँ इसी काल में एक महापुरुष अपना लीला चरित्र रत्नागिरी के पास पावस ग्राम में कर रहा है और उनका नाम है स्वामी स्वरूपानंद। वे नाथ संप्रदाय के आदिनाथ से चली आ रही अविरत परंपरा के अध्वर्यु हैं। सोहम ध्यान साधना में तल्लीन हुए उनके पास आने वाले परमार्थ की जिज्ञासा रखने वालों को वे कृपानुग्रहित करते हैं। सोहम शब्द सुनकर बाला साहेब की उत्सुकता, हाल ही में जो सोहम स्मरण हुआ था साधना करते वक्त, उसकी याद आ गई उन्हें। फिर स्वामी सत्यदेवानंद जी ने स्वामी स्वरूपानंद जी के सोहम ध्यान पर रचित एक अभंग सुनाया। अंतरी सतत करी सोहम ध्यान, न जाई गुंतुन संसारात, धन सुतदारा असुदे पसारा, नको दे उथारा आसक्ति ते, होवो हानि लाभ पावो सुख दुख, न सोड़ी विवेक साक्षित्वाचा, स्वामी भणे राहे देही उदासीन, पाहे रात्रन दिन आत्मरूप। बाला साहेब को प्रपंच व परमार्थ को एक रूप करने के अपने प्रयत्न की छटा इस अभंग के में पाकर उन्हें आश्चर्य मिश्रित समाधान हुआ। और ऐसे अनुकूल घटनाएं होती गई कि सरलाताई की माता ने अपने जावाई को भेंट में स्वामी स्वरूपानंद जी का चरित्र दिया। दुकानदारी में व्यस्त रहने के कारण वो थोड़ा ही पढ़ पाए। और आगे कुछ संतों से मुलाकात हुई। गुलवनी महाराज से मुलाकात हिरंडवाना में उनके आश्रम में हुई। बाला साहेब ने कहा, महाराज आपकी कृपा मुझ पर हो, कोई और इच्छा नहीं है। महाराज ने कहा, हम क्या कृपा करेंगे, आप पर तो आळंदी के ज्ञानदेव की सीधी कृपा है। बाला साहेब ने कहा, आप कृपा देते नहीं और ज्ञानदेव की कृपा समझते नहीं। महाराज ने कहा, जल्द ही इसका अनुभव आएगा। अमल नेरकर महाराज ने भी, ज्ञानेश्वर महाराज की पूर्ण कृपा है और क्या चाहिए कहा। सोनगीकर महाराज ने बाला साहेब का प्रवचन सुनकर कहा कि ऐसा लग रहा था मानो ज्ञानेश्वर महाराज की आपके मुख से ही आपसे के मुख से बोल रहे हैं। और एक दिन ऐसा आया कि स्वामी स्वरूपानंद जी के एक बाल मित्र बाबा देसाई उनकी दुकान में आए। वे जरा अलग अंदाज से संवाद किया करते थे, पर ये स्वामी माधवनाथ जी के बड़ा हित का हुआ। बाला साहेब दुकान में आया और कहा, वहां ज्ञानेश्वरी देखकर कहा, ज्ञानेश्वरी वाचता वाटत, तसा माझा ही ज्ञानेश्वरी सा फारसा अभ्यास नहीं, परंतु स्वामी के साथ रहकर कुछ वाचन हुआ है। आमचे स्वामी नाम म्हणजे अप्पांना कधी पाहिले आहे का? अहो म्हणजे पावस से स्वामी स्वरूपानंदांचे कधी दर्शन घडले आहे का? सीधा प्रश्न था। त्यांची अभंग ज्ञानेश्वरी एकदा वाचा म्हणजे मग तुम्हाला ज्ञानेश्वरी नीट कळेल। और उस दिन स्वामी जी शाम को जो निरूपण जिन ओवियों पर करने वाले थे उसका चिंतन कर रहे थे। वे जे निर्णय माझे प्रकाशुनी अन्य थात्वे माते दाऊनी सर्व ही सर्वी भजौनी बुझावीत से जे। जब बाबा देसाई पुनः अपने घर गए तो वहां जब ये इस घटना का वर्णन किया तो उन्होंने कहा, अरे वो तो बाला साहेब है जो रोज नित्य ज्ञानेश्वरी पर शाम को निरूपण करते हैं। बाबा देसाई पुनः दुकान पर आए, अरे आपने बताया नहीं। लगभग उनका मजाक जैसा हुआ। और तब उन्होंने कहा कि शाम को मैं आपकी ज्ञानेश्वरी के लिए आता हूं। कथा हमने अनेक बार सुनी है, उसी शाम शायद वो जाने वाले थे, पर इस ओवी पर माधवनाथ जी ने, तब बाला साहेब जी ने 3 दिन प्रवचन किया, तीनों दिन वो आए। और फिर आने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार की मेरी पूना की भेंट सफल हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों पूर्व स्वामी स्वरूपानंद जी यानी अप्पा उन्हें गणेशनाथ महाराज के पास ले गए थे अनुग्रह देने के लिए। फिर हम ये कथा जानते हैं, गणेशनाथ जी ने कहा क्या ज्ञानेश्वरी पढ़ी है? इन्होंने कहा नहीं, 12 बार पढ़ो और फिर अनुग्रह मिलेगा, 12 बार मैं पढ़ लूंगा तो मैं ही अनुग्रह दूंगा। तब जो उन्होंने कहा था कि कड़ेल तुम्हाला एक दिवस, वो ये दिन था। बाबा देसाई ने कहा आज मुझे उस दिन की याद आती है, माधवनाथ जी को अप्रत्यक्ष रूप से नाथ संप्रदाय के परमहंस गणेशनाथ महाराज का भी आशीर्वाद मिला। स्वामी स्वरूपानंदांना भेटा, बाबा देसाई ने कहा स्वामी जी म्हणजे प्रति ज्ञानेश्वर आहेत, ज्ञानेश्वरीची मूर्ती मंत प्रतिमा म्हणजे आमचे अप्पा, और उनकी एक तस्वीर उन्होंने भेट स्वरूप स्वामी जी को दी। एक गुरु बंधु का लिखा हुआ पत्र था, जब ऐसे एक एक संकेत स्वरूपानंद जी के विषय में आने लगे तो उन्होंने घर आकर जो चरित्र सरलता की माता ने दिया था उसे पूरा पढ़ा, और पढ़ते वक्त गुरु बंधु को लिखा हुआ स्वामी स्वरूपानंद जी का एक पत्र पढ़ा उन्होंने। जगात सत्य कायम जीवंत आहे, तसेच सत्स्वरूपी सद्गुरु ही जीवंतच आहेत, त्यांनी दाखवलेल्या अखंड प्रकाशमय मार्गावरील प्रगती हीच सद्गुरूंची आरती, निरासक्त व्यवहार हाच सद्गुरूंना अर्पण केलेला पुष्पहार, आणि आत्मोप्य बुद्धीने सर्व भूत हितासाठी सदैव झटत असता अखिल विश्वात दुमदुमणारे अंतः समाधानाचे पडसाद हाच सद्गुरूंचा खरा प्रसाद। जिवंत सद्गुरू की आवश्यकता और मिलने पर जीवन किस ऊंचाई तक जाता है, वो संकेत था। स्वामी स्वरूपानंद जी के ये विचार पढ़ते हुए बाला साहेब भाव विभोर हो गए। शरीर की प्रतिकूल अवस्था में भी परमहंस प्राप्त किए, पद प्राप्त किए सोहम हंसारूढ़ स्वामी स्वरूपानंद जी से मिलने की आतुरता बढ़ने लगी। अब तो जाना चाहिए। और 27 अक्टूबर 1968 का वो दिन आया जिस नजारे से हमने शुरुआत की थी। बाबा देसाई के साथ 10 लोगों के साथ वे पावस गए। जाने के पहले उन्होंने पत्र लिखा था कौन कौन इतने लोग आ रहे हैं। स्वामी जी के विचारों में मग्न गौतमी नदी का पुल पार करते ही उन्हें सारे वातावरण में एक परम शांति का अनुभव होने लगा। हे पहा समोरच आहे अनंत निवास, बाबा देसाई ने कहा। देसाई के घर के पड़वी में एक छोटे से कमरे में वे रहते थे। हाथ पांव धोकर वे बाला साहेब स्वामी जी के बुलाने का इंतजार करने लगे। बुलावा आने पर बाला साहेब सरलाताई एवं सुशीलाताई उनके बहन के साथ स्वामी जी के अत्यंत पवित्र एवं गंभीर शांति से भरे हुए कमरे में प्रवेश किया। एक लकड़ी के पलंग के एक कोने में तकिए को टेक कर दोनों हाथ जोड़े हुए वे बैठे थे। प्रसन्न मुद्रा एवं अंतर्मुख दृष्टि, मलमल की सफेद बंडी पहने हुए स्वामी जी सीधे आसनस्थ थे। बाला साहेब ने भी सहज हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्हें लगा कि आज तक ज्ञानेश्वरी के शब्दों के आधार पर जिस प्राप्त पुरुष के विषय में चिंतन चल रहा था वही साकार होकर सामने प्रसन्न पवित्र एवं परम शांत मूर्ति बैठी है। बाला साहेब अपनी सुधबुद्ध खो बैठे और उन्हें स्वरूपानंद जी प्रति ज्ञानेश्वरी नजर आए। ज्ञानेश्वरी मैं जीवन जीने वाले, बाला साहेब ने पलंग और वो जो बाक रखा था उसके बीच की जगह पर दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी की एक आदत थी ज्ञानेश्वरी का कोई भी पन्ना खोले, उन्होंने जो खोला उसमें था या लागी सुमनु आणि शुद्धमती, जो आनंदकु अनन्य गति पैगा गौप्य ही परी तया प्रति सावळी जे सुखे। आगे की ओवियां भी पढ़ी और अंतिम ओवी थी तैसी भक्ता गीतेसी भेटी करीजी आदरेसी, तो देहा पाठी मजसी ये कसी होए। बाबा साहिब को लगा मानो स्वामी जी उनके द्वारा किए जाने वाले निरूपणों का और गुणों के अभ्यास को एक तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वामी जी ने खड़ीसा कर दिया। बाबा साहेब ने गादी पर नमस्कार मस्तक टेक कर पुनः नमस्कार किया और लीनता से पीछे जाते हुए उन्हें देखते हुए बाहर आ गए। बाबा साहेब विचार करने लगे, मानस पटल पर अनेक विचार तरंग उठने लगे कि आज तक अनेक संतों को मिले, देखिए वो आए थे केवल एक सत्पुरुष के दर्शन के लिए, और कैसा उनके भाव तरंग बदलने लगे। आज तक अनेक संतों को मिले परंतु आज ऐसा लगा जैसे स्वामी जी से बहुत पुरानी पहचान है। अंतस के तार सहज जुड़ते गए। मन ही मन उन्होंने स्वामी जी को सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि यहां आने का हेतु महज ज्ञानेश्वरी के एक अंतरंग अधिकारी का दर्शन करना ही था। शाम को बाला साहेब का निरूपण भी रखा गया था। बाला साहेब स्वामी जी के पास आए, अपना आशीर्वाद असावा। स्वामी जी ने कहा आशीर्वाद कशाला, मी प्रत्यक्ष इथे कॉटवर ऐकायला बसलो आहे ना। पूर्व निर्धारित न होते हुए बाळासाहेब ने सहज ज्ञानेश्वरी खोली और जो श्लोक आया महात्मा नस्तु माम पार्थ, महात्मा के गुणों का वर्णन करने वाला 90 अध्याय का वो श्लोक। प्रातः ऐसे ही महात्मा का दर्शन हुआ था और उनका स्मरण करते हुए उन्होंने बाहरदार निरूपण एक घंटे तक किया। निरूपण तो वे रोज करते थे परंतु आज का समाधान कुछ और ही था। 10 वर्षों से वे निरूपण कर रहे थे। यूं तो आज तक समर्थ एवं ज्ञानोबा को गुरु मानकर शास्त्रों का अध्ययन एवं चिंतन पूर्ण हो चुका है और किसी से अधिक समझने की आवश्यकता नहीं लगी, किंतु स्वामी जी से मिलने के बाद वे मंत्रमुग्ध हो गए थे। मनतः पूर्ण शरणागत हो चुके थे और अब जो स्वामी जी कहेंगे वो शिरोधार्य मानने की उनकी भूमिका बनने लगी थी। इतने में देसाई के एक पुत्र ने आकर स्वामी जी का संदेश दिया, अप्पा मणाले कि बाळा साहेबांना जाऊन सांग कि तुम्ही ज्ञानेश्वरी वर फार सुंदर प्रवचन करता, पिछले 10 वर्षों से चल रहे उनके दात यज्ञ को एक प्राप्त पुरुष महात्मा की ओर से मिले इस उद्गार से बाळा साहेब प्रसन्न हुए। दूसरी ओर स्वामी जी भी बाळा साहेब से मिलने के बाद से एक विशेष समाधानी और प्रसन्न थे। मस्तक पर बुक्का लगा हुआ जो उनका वो तस्वीर है उसी समय वो फोटो लिया गया था, और आसपास के एक साधक ने पूछा भी था कि आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आज बाळा साहेब से निरूपण होता ना। उन्होंने और एक उद्गार निकाला कि मला वाटते बाळा साहेब भेटले आता माझे काम झाले, ये सब पहली भेट में हो रहा है। अगले दिन 29 अक्टूबर 1968 स्वामी जी ने बाळा साहेब को अनपेक्षित अनुग्रह दिया। बाळा साहेब गुरु परंपरेने जेवढे माझे काही माझ्याकडे आले आहे तेवढे मी आज तुम्हास देत आहे। कालच्या पहिल्या भेटीच्या वेळी गुरु गुजतरी तुझ्या ठाई लपवू नये असा स्पष्ट संकेत माऊलींचा शब्दात झालेलाच आहे। स्वामीजीने सोहम की प्रक्रिया स्वयं करके दिखाई। सोहम सोहम हेच करावयास हवे असे नाही। बाळासाहेब की प्रगति को देखते हुए उन्होंने कहा एखादा महात्मा नुसते सह सह असे ही म्हणतो, कुठून तरी सर्व ठिकाणी परमात्मा भरून आहे असा बोध अंतःकरणात ठसला म्हणजे झाले। कमजोरी के कारण स्वामी स्वरूपानंद जी थोड़ा कहते थे मगर कॉन्सन्ट्रेटेड कहते थे। कोणताही मंत्र चांगलाच असतो परंतु गुरुमुखाने मिळालेल्या मंत्राने इष्ट तो परिणाम लवकर साधतो। खरं म्हणजे हे सारे तुम्हाला ठाऊक आहेच, सद्गुरूच्या सांगण्यामुळे ते सर्व शिष्यांचा अंतकरणात ठीकठाक बसते, तेथून मग ते हालत नाही कारण त्यामागे सर्व संप्रदायाची शक्ती असते। बाळासाहेब को लगा की आज तक किए गए शास्त्राभ्यास का सही मायने में अर्थ आज समझ में आ रहा है। उन्होंने तय किया कि अधिकाधिक स्वामी जी के सहवास या उसी परिसर में रहेंगे। यहां हमें युक्तियां मिल रही हैं क्या तय किया उन्होंने, और हम जानते थे कि उनके ये कथा भी हम जानते हैं कि बाकी साथ आए लोग कहीं और घूमने गए, उन्होंने बाळा साहेब ने उनसे किया कि अब हमारी मुलाकात रत्नागिरी के बस स्टैंड पर होगी लौटते वक्त, तब तक वो इसी परिसर में रहे। स्वामी जी ने एक साधक से यह कहा भी, स्वामी स्वरूपानंद जी ने एकटे बाळासाहेब असे निघाले, जे आले ते इतरत्र कुठेही न जाता फक्त इथेच राहिले. सद्गुरु क्या ढूंढता है शिष्य में, सत्शिष्य में. बाळासाहेब आले, आता मी मोकळा झालो, या पुढचे कार्य बाळासाहेब करतील. सद्गुरु से मिलने पर शिष्य को तो धन्य लगता ही है. परंतु ऐसा शिष्य विरला है, ऐसे शिष्य की विशेषता कुछ और है, जिससे मिलकर सद्गुरु प्रसन्न हो. पुणे लौटने के बाद अब बाळा साहेब का जीवन सद्गुरुमय होने लगा. स्मरण में वही, निरूपण में वही, दुकान में आने वालों के साथ चर्चा में वही. और हर आने वाले को बड़े ही व्याकुल होकर कहते थे कि एकदा तरी पावसला जाऊंगा. नवविधा भक्ति के चटाएं श्रवण हो रहा था, कीर्तन सद्गुरु का चल रहा था. सद्गुरु स्मरण, पाद सेवन, ध्यान में अनुभव सद्गुरु से एक रूप होने का चल रहा था. अर्चन, वंदन, दास्य, आज तक वे निरूपण करते थे. फिर उन्होंने कहा आपकी आज्ञा से निरूपण चल रहा है. उनके जीवन का हर कार्य उनकी मर्जी से चल रहा है. शिष्य ने जहां तक प्रयत्न करना है वह सब बाळा साहेब करने लगे. ১৯৬৯ में भागेश्वर निवास में पहली गुरु पूर्णिमा हुई. बाळा साहेब ने कहा खरतर शास्त्रात जे काही सांगितले आहे ते सद्गुरु सांगतात, परंतु ती शास्त्र वचने ती सद्गुरूंची स्वतःची अनुभूती असते, त्यामुळे साधकांच्या मनात ती सहज ठसतात. म्हणून नुसत्या शास्त्रांच्या अभ्यासाने बोध होणार नाही, त्या अभ्यासाने एक वेळ शास्त्रांचा अर्थ कळेल, पण नुसती घोकंपट्टी व्यर्थच. सद्गुरूंच्या अनुभवसिद्ध शब्दांनीच शास्त्रांमध्ये दडलेला अर्थ खऱ्या अर्थाने समजेल, आपल्या अनुभवाचा होईल, वर्तनात उतरेल. आत्मदर्शन कशाला म्हणतात हे शास्त्र वचनांनी मला माहीत होते. प्रामाणिक उद्गार आहे. तरी तसा बोध झालेला नव्हता. देह मन बुद्धी यांचे निराकरण झाल्यावर जे काही उरते ते आत्मस्वरूप आपले प्राप्तव्य आहे हे ग्रंथाआधारे वाचून माहीत होते, पण त्याचा प्रत्यक्ष बोध मात्र स्वामीजींनीच मला करून दिला. अंतरीचा दिवा प्रज्वलित केला आणि खरोखरच त्यांच्या कृपेने त्या प्रकाशात मला जीवनाचा खरा अर्थ हळूहळू उलगडतो आहे. सद्गुरु अस्ति हृदयात, सत्शिष्यात ते जागवित. स्वामीजी के स्मरण में वे भाव विभोर हो गए. इसका चिंतन करते वक्त स्वामी जी एक घटना याद हो आई कि स्वामी माधवनाथ जी क्यों ऐसा चाहते थे उन जिज्ञासुओं के विषय में जो परमार्थ के पद पर ईश्वर प्राप्ति करना चाहते थे, परंतु हयात सद्गुरु नहीं है ऐसे जगह पर दीक्षा ली हुई थी, वहां उन सबको वो एक साधिका के तो को तो उन्होंने अब कहा मेरे पास अधिकार पत्र है. आज समझ में आता है स्वामी जी आपके कारण इस विषय पर चिंतन हुआ तो पता चला कि उनका अपना अनुभव था कि सद्गुरु कृपा होने के बाद परमार्थ की दिशा में प्रगति कितनी तेजी से होती है. स्वामी जी के स्मरण जमा हुई सारी गुरु दक्षिणा उन्होंने पावस भेज दी. कभी पुणे से बाहर न जाने वाले बाळा साहेब अनुग्रह के बाद पावस पहले ही वर्ष में करीब 5 बार पावस गए। अब इस गुरु शिष्य के बीच एक अद्भुत प्रेम का सिलसिला बढ़ता गया। बाला साहेब के पसंद का ख्याल, पसंद नापसंद का ख्याल स्वामी जी रखा करते थे, क्या उन्हें निरस दूध यानी कच्चा दूध लगता था। बाला साहेब को पता नहीं था तो भी उन्हें वो दिया गया। दर्शन लेते वक्त बाला साहेब अपनी ओर से क्या सतर्कता रखते थे, अपने भाव की अभिव्यक्ति पर, स्वामी स्वरूपानंद जी का जब दर्शन लेते थे अपने भाव की अभिव्यक्ति पर प्रयत्न पूर्वक नियंत्रण किया करते, क्योंकि वे जानते थे कि स्वामी जी की कमजोर स्थिति के लिए यह ठीक नहीं है। दूसरों के अनुग्रह के समय स्वामी जी ने बाला साहेब को वहीं बिठा लिया। ऐसा अनेकों बार हुआ। साथ में एक बार सोहम भजन भी किया। त्यावेळी सोहम साधनेतील एक अंतरंग खूण सांगताना स्वामी जी ने सांगितले, श्वासाबरोबर वर जाणारे मन चिदाकाशामध्ये अत्यंत स्थिर करायचे असते। क्या जो बाळासाहेब के अति प्रगत शिष्य और सिद्ध, लगभग सिद्धता को प्राप्त हुआ और सिद्ध होना बाकी है, थोड़ी जो कसर थी वो बताते जा रहे थे। ऐसा सोहम भजन बाद में अनेकों बार बाला साहेब के साथ किया। दूसरी पावस भेंट में ही स्वामी जी ने उन्हें कहा, कृष्ण विष्णु हरि गोविंद या नामाचे निखिल प्रबंध माझी आत्मचर्चा विशद उदंड गाती, बाला साहेब तुम्ही हे स्वतः करीतच आहात, लोकांनाही ते करायला शिकवा। दूसरी भेंट में मार्गदर्शन करने का अधिकार दिया। इस तरह स्वामी जी ने बाला साहेब के पास औरों को प्रबोधन करने की शक्ति है ऐसा संकेत किया। जून 70 ज्ञानेश्वरी निरूपण को 12 वर्ष पूरे हुए, समारंभ करने से पूर्व बाला साहेब ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा, श्रीमत परमहंस सद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद यांचे सेवेशी बालके माधव यांचा त्रिवार चरणी मस्तक ठेवून नमस्कार, ज्ञानेश्वरीनेच मला श्रींचे चरणी आणले अशी माझी श्रद्धा आहे। बाळासाहेब उणे ज्ञानेश्वरी म्हणजे शून्य, आपला कृपांकित संत चरणरज माधव, स्वामीजीने आशीर्वाद पत्र भेजा, म्हणवनी मी होनी माते सेवणे आहे आईते ते करी हाता येते ज्ञाने येणे। कमजोरी के कारण वो बड़ा पत्र नहीं लिखा करते थे, बड़ा प्रतिपादन प्रबोधन नहीं करते थे, उवियों के माध्यम से बताते थे। आशीर्वाद आत्मतृप्त स्वरूपानंद, पावस जाने वालों को, जो अनेकों को स्वामी माधवनाथ जी या बाला साहेब पावस भेजा करते थे, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा करते थे, स्वामी स्वरूपानंद जी को बिल्कुल कष्ट न हो, उनके आसपास की व्यवस्था पर कोई अधिक असर न पड़े, इसलिए वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। कीर्तन भक्ति का ही ये एक नजारा है। स्वामी जी भी प्रसन्न हुआ करते थे ये जानकर कि आने वाला व्यक्ति बाला साहेब के यहां नियमित श्रवण के लिए जाता है। वे उनसे कहते कि आपल्याला इकडे पावसला वारंवार येणे कठीण, तेव्हा साधनेत काही अडचण आली तर पुण्यात श्री बाळासाहेब वाकडे यांना भेटत जावे। नोव्हेंबर 1970 पावस भेट इस बार स्वामी जी ने ज्ञानेश्वरी अपने हाथों से खोली। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, ज्याला आत्मबोध झाला आहे, जो कर्म फळाला विटला आहे, त्याला शांती त्याचा घरी येऊन माळ घालते। थोड़ा विराम लिया। बाळासाहेब तुम्ही शांत झाला आहात, लोकांना तसे शांत व्हायला शिकवा। इस बार भी अनंत निवास में जब गए तो ये सब याद आ रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था कि किस तरह स्वामी स्वरूपानंद जी ने बाला साहेब के साथ संवाद किया होगा। तीसरे दिन की भेंट के दौरान सोहम भजन 5-7 मिनट किया। फिर बाला साहेब ने पूछा, आपल्याला भगवान विष्णु उनसे सगुण दर्शन झाले, छोटी छोटी जो शंकाएं संदेह थी संदेह रहित कर रहे थे वो अपने सत्शिष्य को। स्वामी जी ने कहा, हो पण, तुरंत कहा, हो पण सगुण दर्शन क्षणिक असते, ते होते आणि नाहीसे होते, ते तितके महत्वाचे नाही, अंतिम अनुभवाचे दृष्टीने सोहम साधने अंतिम निर्गुणाचा बोध अधिक महत्वाचा। कुछ महीने बाद दादासाहेब नातू के साथ पुनः पावस भेट। स्वामी जी ने कहा, आज कार्तिक वद्य त्रयोदशी ज्ञानेश्वर महाराजांची पुण्यतिथी, या परम पावन दिवशी आज मी तुला काय देऊ, कल्पवृक्ष का अवतार, उस क्षण के लिए। बाळासाहेब आपल्याकडे देण्यासारखे उदंड आहे, मला घेण्याची पात्रता द्या, म्हणजे आपण जे द्याल ते मी घेऊ शकतो। स्वामीजीने अत्यंत प्रसन्न होकर संजीवनी गाथा में से एक अभंग पढ़ने लगे, पाहे त्याची ज्याची दृष्टि सर्वत्र श्री हरि, भक्त तो संसारी भाग्यवंत, संसारी भक्त के गुणों का विशेष वर्णन, रामकृष्ण हरि उच्चारी वैखरी, भक्त तो संसारी भाग्यवंत, आठवें श्री हरि नित्य हृदयंतरी, भक्त तो संसारी भाग्यवंत, स्वामी मणे भक्ति पासी चारी मुक्ति, भाग्या नाही नीति भक्ताचिया। इस अभंग पर स्वामी जी ने हस्ताक्षर किया और प्रसाद भेंट दिया, हाथ उठाकर कहा आशीर्वाद। इस बार के अंतिम भेंट में स्वामी जी ने प्रसाद के चार पांच पुड़ी उन्हें देकर कहा, तुला तुम्हाला योग्य वाटेल त्यांना हा प्रसाद द्या। मार्च 71 आबा साहेब किस संग पावस भेंट मिलने के बाद दोनों स्वामी जी से मिले और पर बाहर आने के बाद ध्यान के विषय में कुछ प्रश्नोत्तर हुए। स्वामी बाळा साहेब ने उस प्रश्न का समर्पक उत्तर भी दिया, हालांकि ये संवाद धीमी आवाज में चल रहा था परंतु स्वामी जी को सुनाई दिया। और दोबारा दोपहर में जब दोनों मिलने गए तो स्वामी जी ने कहा, बाळा साहेब म्हणतात ते बरोबर आहे, परी ते वेगळेपणे भोगीजे, जैसे पक्षीये फळ चुंबीजे तैसे नभे तेथ विसरीजे भोगते पण ही। उसमें प्रणाम करके आबा साहेब जब बाहर गए, शिष्य को थोड़ा ही गड़ना बाकी था, वही चल रहा था, उन्होंने कहा, बाळा साहेब से वेदांत्यांशी फार चर्चा नको। लौटते वक्त जब बाळा साहेब स्वामी जी से मिलने गए उस भेंट में, तब अचानक स्वामी जी ने बाळा साहेब को प्रणाम के लिए जोड़े हुए हाथ को उन्होंने अपने हाथ में लिया, दासत्व से सख्यता में प्रवेश आरंभ हुआ। कोमल हस्त स्पर्श का यह अद्भुत अनुभव था, प्रेम एवं विश्वास का अनोखा संगम था इस स्पर्श में, धीमी आवाज में कहा आशीर्वाद। ऐसा लग रहा था कि यह तय कर पाना मुश्किल है कि गुरु शिष्य के बीच में कौन किसके प्रेम में अधिक दीवाना हो चला है, उनका रिश्ता अधिक गहन होता जा रहा था। बाळा साहेब ने सावधपूर्वक स्वामी जी के दैवी गुणों को आत्मसात करने की दिशा में तत्पर हो रहे थे, वे जान गए थे कि सद्गुरु की कृपा की कितनी अत्यंत आवश्यकता है। जून 71 बाळा साहेब ने एक सुमन सद्भक्त सुमन ताड़े योगिनी ताड़े एक अवलिया की तरह तत्पर साधना करने वाली एक युवती थी, वैकुंठ में जाकर भी ध्यान को बैठा करती थी, उसके भले के लिए बाळा साहेब ने उसे अपने घर में रखा था और वो उससे कहते थे कि फिर पावस जाओ, स्वामी जी का अनुग्रह लो, और वो सुमन सद्भक्त सुमन कहती थी आप ही मेरे गुरु हैं। उस पर बाळा साहेब ने कहा, माझ्या सद्गुरूंच्या पदधूलीतून एकच काय असंख्य बाळासाहेब निर्माण होऊ शकतील असे त्यांचे अद्भुत सामर्थ्य आहे। और नोव्हेंबर 71 में उन सबके साथ वे पावस गए। शाम को स्वामी जी ने उन्हें फिर बुलाया और इस बार की भेंट जरा फुर्सत में हुई, पर साधना संबंधित अन्य विषय के बजाय उन्होंने हठयोग और राजयोग से संबंधित बाळा साहेब के प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया। उत्तर साधना से संबंधित था। फिर सख्यत्व में जो प्रवेश हुआ था, स्वामी स्वरूपानंद जी ने एक लेख उनको दिया, उस लेख पर जरा कहा कि जरा पढ़ के बताए कि इसमें कुछ त्रुटि है क्या। बाळा साहेब ने कहा पढ़कर कि स्वामीजी लेख चांगला आहे परंतु वाक्यांची रचना थोडी लांबलचक वाटते. स्वामीजीने कहा मग ती वाक्य लहान करून हा लेख पुन्हा लिहून आणा. आज पहिली बार स्वामीजी ने आज पहली बार आज्ञार्थी वाक्य कहा था और फिर अनौपचारिक बातों का सिलसिला आरंभ हुआ. उसमें कुछ ऐसा उल्लेख था कि स्वामी स्वरूपानंद जी की उम्र गोलवलकर गुरुजी से अधिक बताई गई थी. वो लेख था उन दोनों महापुरुष के भेंट के बारे में. तो बाला साहेब ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं मेरी समझ में आ रहा है परंतु तो ये तो वस्तु स्थिति है, इसे कैसे बदला जा सकता है. स्मितहास्य करते हुए स्वामी जी ने कहा बरे तुम्ही म्हणता तर ठीक आहे त्याप्रमाणे करा. अगले दिन स्वामी जी ने प्रातः बाला साहेब को कहा भेट के लिए जब आए कि बात पर नहीं जरा तिथे नको अगदी जवळ या. बाळा साहेब आपण ज्ञानेश्वरीची प्रवचन सेवा करीत आहात, सत्प्रवृत्त लोकांना इथे घेऊन येता, अनुग्रह देऊन त्यांच्या साधनेची काळजी घेता. माझ्या अशक्त प्रकृतीमुळे मी जे करू शकलो नाही ते सर्व तुम्ही करा, तुम्ही सतत संतच आहात, तुम्ही हे कराल असा माझा विश्वास आहे. इस वक्त स्वामीजीने कहा की कई लोग मुझसे पूछने आते हैं तो मैं उन्हें सोहम प्रक्रिया करके दिखाऊं या नहीं, ऐसी मेरी दुविधा रहती है. तो स्वामी जी ने कहा दाखवा की, परंतु नुस्ती प्रक्रिया दाखवून इष्ट तो परिणाम होईल का. बाळा साहेब तुम्ही 2 वर्षानंतर संप्रदायासह मंत्रच द्यायला लगा. और फिर कुछ समय बाद स्वामी जी ने कहा 2 वर्षांनी कशाला, उद्यापासूनच तुम्हाला योग्य वाटेल त्या साधकाला तुम्ही मंत्र द्या, अनुग्रह का अधिकार दिया. ये 2-3 वर्षों में ही हो रहा था. ये अगली भेंट में स्वामी जी ने बाला साहेब ने ऐसे उद्गार किए कि स्वामी जी मैं आपकी कोई प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर पाता. तो स्वामी जी ने कहा बाला साहेब तुम्ही पुण्याला नित्य नेमाने जी ज्ञानेश्वरी सांगता तीच तुमची सद्गुरु सेवा, तुमच्या ज्ञानेश्वरी प्रवचनाला मी तिथे नित्य उपस्थित असतो. आशीर्वाद देते हुए स्वामी जी ने कहा ते गुरु शिष्यांचा गोठी पदपिंडाची गाठी तेथे स्थिर राहुनी नुठी कवणे काळी. बाहर आने के बाद कमरे से जब बाहर आए तो बाबा देसाई ने एक मजाक से कहा, उसके पहले स्वामी जी ने जो कहा था कि मी तुमच्या प्रवचनाला नित्य उपस्थित असतो, तो बाबा देसाई ने कहा तुम्हाला काय वाटलं बाळासाहेब से का कि ते उपस्थित असतात, मी म्हणजे तुमचा अहंकार उपस्थित असतो. ये भीतर स्वामी जी ने सुना और एक सेवक को जाकर बताया कि नहीं मला तसं म्हणायचं नव्हतं, मी म्हणजे मी उपस्थित असतो. उन्होंने मजाक में भी गलत संदेश अपने शिष्य को न जाए इसका त्याची काळजी घेतली. धीरे धीरे मराठी वाक्य पहले आने लगा है, ट्रांसलेट बाद में हिंदी में करना पड़ता है. उसके बाद सद्भक सुमन ताड़े से कहा अनुग्रहाच्या रूपाने मी शिक्का मोर्तब केला आहे इतकेच, पण पुढील मार्गदर्शन तुला बाळासाहेब यांच्याकडून मिळत राहतील. बाळासाहेब हे संतच आहेत, माझ्याकडे आल्यामुळे त्यांच्या अंगी संतत्व आले असे नाही, तर त्यापूर्वीही ते संतच होते. ते शांत झालेले आहेत, त्यांच्या घरी तू राहते आहेस. ध्यान से सुने हम सभी, जीवनात कसे वागावे कसे बोलावे नम्रता अंगी कशी बाणवावी हे तुला त्यांच्या जीवनाकडे बघून शिकता येईल. स्वरूपानंदजीने सुमन तडे को बाळासाहेब के साथ रहने किस तरह रहा जाए बताया. हम सब भी प्रत्यक्ष सद्गुरु के साथ रहते हैं, जितने समय रहते हैं यानी उनके साथ रहते हैं, इसी नजर से रहे. 72 पावर्स भेद नहीं. स्वामी जी ने बाला साहेब को अगली भेंट में नाथ संप्रदाय का आध्वर्य बनाया. समय कम होने के कारण थोड़ा वो नाथ संप्रदाय का जो अध्वर्य बनाया है वो भेंट भी बड़ी अद्भुत थी। धावता अड़ावा घी हुआ अपन स्वामी जी जब आए सुबह ध्यान को बैठे अपने कमरे में, ध्यान से उठे तो उन्होंने सामने देखा कि स्वरूपानंद सेवा मंडल के कार्यवाह सेक्रेटरी परांश पे गुरुजी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। वे स्वामी जी का दो संदेश लाए थे, स्वामी स्वरूपानंद जी का। गुरुजी ने पहला संदेश दिया, बाळा साहेब स्वामी जी ने मला निरोप दिला है कि गेली 25 वर्षे यथामती यथाशक्ति नाथ संप्रदायाची जबाबदारी मी सांभाळली, आता यापुढे ही सर्व जबाबदारी मी बाळासाहेब यांच्यावर सोपवित आहे। बाळासाहेब ने सुनते हुए अचंबित होते हुए कहा, माझ्यावर ते कसे शक्य आहे? मी स्वामीजींना सांगेन की मला झेपणार नाही, मागे मला अनुग्रहाचा अधिकार दिला तेवढा पुरे, मी एक साधा संसारी मनुष्य आहे, नाथ संप्रदायाची धुरा वाहण्यासाठी मी योग्य नाही। शिवाय दुकानदारीचा व्यापामुळे मला तेवढा वेळही मिळणार नाही। स्वामीजी जानते थे, स्वामी स्वरूपानंद जी जानते थे अपने इस महत्वाकांक्षा रहित निरहंकारी शिष्य को स्वामी जी अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा संदेश भी दिया था। गुरुजी ने कहा, बाळा साहेब त्या पहिला निरोपा बरोबर दूसरा ही एक निरोप स्वामीजींनी मला दिलेला आहे, तो म्हणजे बाळासाहेब भेटीला आले की मीच तीन चार वाक्य उच्चारीन, त्यावर बाळासाहेबांनी आपले मत व्यक्त करायचे नाही अथवा अन्य काही बोलायचे नाही, मी जे काही लिहून ठेवले आहे त्याचा त्यांनी नुसता स्वीकार करायचा। स्वामीजी जब उनसे मिले, बाळासाहेब जब उनसे मिले तो स्वामीजी ने कहा, आजवर मी नाथ संप्रदायाची धुरा सांभाळली, आता तुम्ही ती सांभाळा, उपासना करा, आनंदात रहा, यथाशक्ती यथामती गुरु परंपरा पुढे चालवा, तुम्हाला माझे पूर्ण आशीर्वाद आहेत। फिर उन्होंने एक लिफाफा बाळासाहेब के हाथों में देते हुए अत्यंत धीमी आवाज में कहा, स्वामी माधवनाथ। बाळासाहेब स्वामी माधवनाथ हो गए। बाळासाहेब यह सुनकर अत्यंत भाव विभोर हुए। घटनाक्रम को थोड़ा गति से आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी जुलाई 74 में जब आए थे, बड़ी ही विकल अवस्था हो गई थी स्वामी स्वरूपानंद जी की। उन्होंने भीतर से ही एक संदेश दिया कि एक अंगणात एक कंबल अंथरून दक्षिण कड़े तोंड करून त्यावर ठेवा, यानी अपने अब मैं देह रखने वाला हूं, ऐसा संदेश दिया। भाऊ देसाई बाळासाहेब के पास आकर उन्होंने ये बात बताई। बाळासाहेब ने कहा, सख्यत्व के ये तरंग। बाळासाहेब ने कहा, भाऊराव स्वामीजींना खोलीत जाऊन सांगा की बाळासाहेब विचारत आहेत, तशी आपली स्वतःची इच्छा आहे का? और जब ये संदेश स्वामीजी को मिला, बाळासाहेब ने कहा है तो वो सावध हुए, और फिर उन्होंने कहा, बरोबर आहे, माझी इच्छा कसली हे ठरवणारा मी तरी मी कोण, जगन मावलीची जशी इच्छा असेल तसे घडू दे। पुणे वापस आ गए और फिर यहां पर उन्हें दुकान में यह संदेश 15 अगस्त 74 को मिला कि स्वामी जी का देहांत हो चुका है। वे तुरंत वहां पर गए, पर वो संदेश मिलते ही उन्हें समझ में आ गया कि स्वामी जी की अवतार लीला समाप्त हुई। बाळासाहेब के नेत्र भराए, विचार तरंग उठे, स्वामी जी दूर पावस में थे परंतु उनसे जाकर मुलाकात तो होती थी, अब न होगी। दर्शन ले सकते थे, अब न होगा। वृंदावन में रहते वक्त 30 जुलाई 96 को जब स्वामी माधवनाथ जी की खबर मिली देहांत की, तब कुछ कुछ ऐसे ही तरंग मेरे ही मन में नहीं प्रत्येक साधक के मन में आए थे। कुछ वार्तालाप होता था, कुछ पूछ सकते थे, अब वार्तालाप न कर सकेंगे। वो सगुण रूप का आधार था, अब न रहा। उनका आश्वासक प्रेम भरा स्पर्श, वो प्रेम भरी नजर अब कहां ढूंढेंगे। इतने में भी एक ग्राहक दुकान में आया। वो ग्राहक का शांतिपूर्वक व्यवहार किया और तुरंत पावस की ओर चले। पावस में स्वामी स्वरूपानंद जी की समाधि यात्रा भी समाप्त हुई और फिर बाला साहेब स्वामी जी के कमरे में उनके अदृश्य चरणों पर मनोमन नमस्कार किया, परंतु आज प्रेम से पीठ पर सहलाने वाला हाथ नहीं था। अमृतमय दृष्टि, प्रेम भरे शब्द आज न थे। बाला साहेब इस अत्यंत विरह के भाव में ही बाहर आकर ध्यान के लिए बैठ गए। उन्हें स्वामी जी का सगुण दर्शन हुआ, धीमी आवाज में भी सुनाई दिया। अत आणखी काळजी कसली, सर्व काही दिले आहे ते सावध तेने भोगा। बाद में भी थोड़ी शंका थी तो ऐसा वर्णन है कि दुकान में एक व्यक्ति अचानक आया और उसने भी कहा, काळजी कसली, स्वामी जी आहेत तुमच्या बरोबर, इतना कहा और वो निकल गए। छह मिनट है स्वामी जी, आपने जो ग्रेस पांच मिनट दिया था उसका आधार लेता हूं। बाद के जीवन में स्वामी जी ने जो उद्गार अलग अलग मौकों पर व्यक्त किए वो साधक के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। थोड़ा हम फास्ट सुनते हैं। और वो जो स्वामी माधवनाथ जी स्वामी स्वरूपानंद जी के विषय में कहते थे, इतनी बार स्वामी जी आपके मुख से स्वामी माधवनाथ जी के विषय में कहते हुए सुना है ऐसा। ये सब जब मैं चिंतन कर रहा था पिछले 20 वर्षों से, 96 से स्वामी जी ने अध्वरी के रूप में 96 के बाद एक वर्ष बाद काम शुरू किया, पर प्रवचन कर रहे थे। कितनी बार हमारे कानों में भी वो बात गूंजी है। वे कहते थे, स्वामी जी का जीवन हिमालय की तरह उत्तुंग, आकाश की तरह व्यापक, सागर की तरह गंभीर, गंगाजल की तरह पवित्र निर्मल था। ऐसा ही जीवन सभी को मिले इसके लिए वे प्रयत्नशील रहे। उनके पास आने वाले साधकों को स्वयं साधना का मार्गदर्शन करते हुए जीव शिव की पहचान कराना उनका मुख्य कार्य था, ताकि सभी सांसारिक सुख दुख से परे निकल चले। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा और पर्याय यानी राष्ट्र सुधरेगा। अंतस में बोध की पहचान है मृदुवाणी, संवेदन सहनशीलता, अत्यंत विकल अवस्था नहीं। जब वे प्रसिद्ध हुए अनेक मान कीर्ति पैसा आना शुरू हुआ, परंतु स्वामी जी को इसमें से किसी का स्पर्श नहीं हुआ। सदा सोहम हंसारूढ़ रहे, वे जग के थे और नहीं भी थे। हे विश्व ची माझे घर, ऐसा पूर्ण बोध होने पर भी सगुण भगवत भजन में आस्था थी। स्वामी जी समझाते थे कि अंतस में सावधान रहें एवं बाहर सामान्य व्यवहार हो, परमार्थ चर्चा से अधिक जीना है। वे कहते, सदा स्वरूपानुसंधान हे मुख्य साधु से लक्षण, जनी असोन आपन जना वेगड़ा। पिछले 40 वर्षों से मैं ऐसा होने का प्रयत्न कर रहा हूं। और कहीं आशीर्वचन देते हुए आपने भी यही कहा है, अनेकों बार कहा है। जाते हुए वे बता गए, आम्ही पुढ़े गेलो आहोत, जाताना खुणेची पावले उमटून गेलो आहोत। तुम्ही सरल या मार्गाने आलात तर तिथेच याल, सरल या मार्गाने आलात तर तिथेच याल। कुछ और न दिल में याद रहे, एक याद तेरी सदा याद रहे। सरळ हा स्वामीजींचा सर्वांना निरोप आहे। जो कोणी जाईल त्याचा जन्म मृत्यूच संपून जाईल। स्वामीजींचे जीवन हे पूर्ण जीवन होते, असे जीवन जगण्याचा अधिकार आपल्या सर्वांना आहेच। पूर्ण जीवन सर्वांनी जगावे अशी स्वामीजींची इच्छा होती। एक बार स्वामी जी ने, स्वामी माधवनाथ जी ने स्वामी स्वरूपानंद जी से कहा था, महाराज अपन एवडे मोठे कसे झालात, ते म्हणाले मी तरी काय करतो, सोहम सोहम भोगतो, लाख वेळा घोकल्याखेरीज तो बोध होत नाही। सद्गुरु के प्रति अपने भाव उन्होंने अभंगों के माध्यम से स्वामी माधवनाथ जी ने व्यक्त किए। उनमें से कुछ पंक्तियों का संग्रह है, 2 मिनट काफी है उसके लिए। सार्थकता वाटे झाली झालिया वेचाची, भेटी झाली आजी स्वरूपानंदांची। सद्गुरूंची भेट व्हावी, सद्गुरूंनी कृपा करावी, गुरुपदी अनन्यता असावी, हेच माझे मनी वसे, गुरु कृपा झाली आम्हा आता काय होणे। सोहम बोध दृढावला मोक्ष सुख देणे, गुरु भजनी रंगे मन, कैची भूख कैची तहान, ऐसा लगना चाहिए हमें। सद्गुरु देवा परम दयाला विनती ही ऐका, दयाला विनती ही ऐका, कृपा कटाक्षे मज निहाळूनी भ्रांती ती नुरवा, गुरु भजना वीण काळ घालवू नकोरे। जब भी स्वामी जी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, या वो प्रणाम करते हुए हमारे बीच से गुजरते हैं, तब उनकी नजर यही बात बताती है। माधव मणे आता माझ्या गुरुंचीच सत्ता, जारे जारे शरण गुरुदेवा, सर्व सुखाचा निज ठेवा, सांभाळिया बाळा स्वामी सांभाळिया बाळा। गुरु नाम गाता गाता धन्य धन्य जालो, स्वरूपानंद गुरु मज भेटविला माधव, केला धन्य जली आनंदात न्हालो आनंदात न्हालो, गुरु कृपे करुणिया पूर्ण ब्रह्म झालो। अंतिम पंक्ति है, स्वरूपानंद सद्गुरु थोर माधव चरणीचा किंकर। स्वामी जी आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि ये शताब्दी वर्ष हमें कुछ, और इस शताब्दी वर्ष में आयोजित किए हुए आपके प्रत्येक विशेष कार्यक्रम हमें कुछ इस कदर प्रेरित करे कि गुरु भजना वीण काल घालवू नकोरे, ये हमारी हम सभी की बुद्धि में पूर्णतया उतरे और ऐसा उतरे कि फिर न निकले। हरिओम। आज के कार्यक्रम के अंत में विलास दादा स्वामी माधवनाथ जी की आरती बताएंगे।
आरती माधव नाथा, आरती माधव नाथा, दास भक्ति ने पाही, भक्ति ने पाही ठेवी तो माथा। आरती माधव नाथा, आरती माधव नाथा, कृपाळु तू ज्ञान देवी, पाजेशी अमृत ओवी, देशी जाणीव आगळी, जाणीव आगळी अजाण भक्ता। आरती माधव नाथा, आरती माधव नाथा, मायेचे बंध तोडीशी, अक्षय सुख जोडीशी, सोहम स्वरूप खुन, स्वरूप खुन दावीसी आता। आरती माधव नाथा, आरती माधव नाथा, संसारी संत महात्मा, प्रसन्न पूर्ण चंद्रमा, मिळे अखंड चांदणे, अखंड चांदणे चकोर चित्ता। आरती माधव नाथा, आरती माधव नाथा, दास भक्तीने पाई, भक्तीने पाई ठेवी तो माथा। आरती माधव नाथा, आरती माधव नाथा, बोला जगद्गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। परमहंस सद्गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज की जय। परमहंस सद्गुरु स्वामी माधवनाथ महाराज की जय। परमहंस सद्गुरु स्वामी मकरंदनाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।